ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमरीकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को क्रूर आक्रामक कार्रवाई बताया और इसके परिणामों के लिए पूरी तरह से अमरीका को जिम्मेदार ठहराया।
ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराग्ची ने देश के तीन परमाणु संयंत्रों पर अमरीकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। श्री अराग्ची ने चेतावनी दी कि इन हमलों के दुर्गामी परिणाम होंगे। अमरीकी हमले के कुछ ही घंटों बाद जारी बयान में ईरान ने अमरीका पर इसराइल के साथ तालमेल का आरोप लगाया। ईरान ने दावा किया कि अमरीका ने उसके उन शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए कल एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट पर एक कहा कि वो ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रखे हैं।
ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने IAEA को लिखे एक पत्र में कहा है कि उनका देश अमरीकी हमलों की जांच कराना चाहता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से ये भी चाहता है कि अमरीकी हमलों की निंदा करे। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की थी कि ईरान में तीन परमाणु स्थलों पर अमरीकी हमलों से विकिरण के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अमरीकी हमलों के बाद एजेंसी की ये पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
ईरान ने आज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इसराइल पर मिसाइल बमबारी की जिसमें वहां के गुरियन एयरपोर्ट, जैविक अनुसंधान केंद्रों और कमान तथा नियंत्रण सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने पुष्टि की कि हमले हाल ही में ईरानी क्षेत्र पर अमेरिकी और इसराइली हवाई हमलों के जवाब में किए गए। इजरायली रक्षा सूत्रों के अनुसार ईरानी मिसाइल हमले में लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की और ईरान और इसराइल के बीच हाल ही में हुए तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। श्री मोदी ने तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। इस बीच ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत करीब 1,117 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कल रात मशात से विशेष विमान 290 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इस प्रयास के लिए लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया।
धन्यवाद देना चाहता हूं अपने एम्बेसी को जो वहां लोग बेचारे हमारे पीछे दिन रात लगे रहे और हमारी मोदी सरकार का जिंदाबाद।
थैंक यू इंडिया एंड थैंक यू इंडियन एम्बेसी, दे हेल्प्ड अस अ लॉट इन एवरी सिचुएशन, दे वर विद अस इन एवरी सिचुएशन, ऑल क्रेडिट गोज टू देम।
ईरान में तकरीबन 2 साल हो गए रहते हुए, वहां पे मैं मेडिकल की पढ़ाई करता हूं तेहरान में, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। मैं सरकार का काफी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंच गए हैं। इस दौरान वो राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। गृहमंत्री आज रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर का शिलान्यास करेंगे। ये फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय 40 एकड़ क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। श्री शाह आज नया रायपुर में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बैठक करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पहलगाम आतंकी हमले की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने 2 लोगों को हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों की सराहना की है। कल विशाखापत्तनम में 3 लाख से अधिक लोगों के साथ अब तक के सबसे बड़े योगाभ्यास का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योगांध्र पहल और विशाखापत्तनम का कार्यक्रम कई लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि योग एक बार फिर लोगों को एक साथ लाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।